मुख्तलिफ जो हमें रिवायात मिलती हैं कि फलां कोई काम आप करेंगे तो इतने करोड़ नेकियां मिल जाएंगी, या इतना जो है जहन्नुम में इतने करोड़ साल जलाए जाओगे, या फलां जो दो रकत नफल पढ़ोगे तो उससे इतना अजर मिल जाएगा जो कि हजारों लाखों साल का अजर होगा। तो उनका क्वेश्चन ये है कि इस तरह की जो रिवायात हैं इसको जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कोई ट्रेडिंग सी हो रही है, कोई तिजारत हो रही है, और इस इबादत की जो असल रूह है वो इसमें हमें नजर नहीं आती। आपका क्या ख्याल है इस तरह की रिवायात के बारे में?
इस तरह की ज़्यादातर रवायात बिल्कुल या तो मौजू है या इंतहाई ज़ईफ़ रवायतें हैं। मुहद्दिसीन ने ख़ुद ये उसूल कायम किया है कि जिन रवायतों में इस तरह की बातें बयान की जा रही हों कि ये करोड़ों साल का आपको सवाब मिलेगा या अजाब होगा, तो उनको रद्द कर देना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में अजाब व सवाब के कायदे बयान कर दिए हैं बस वो तय हैं, अल्लाह ताला की किताब ही की तरफ रजू करना चाहिए। और लोगों को ये याद रखना चाहिए कि इन रवायात की कोई जिम्मेदारी रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयद नहीं होती। ये लोगों की बातें हैं जो उन्होंने बाद में बयान की है, इनमें सही भी होती हैं, इनमें मुबालगा भी लोग कर देते हैं, ये मौजू भी होती हैं, लोग अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें बयान कर देते हैं। तो ऐसी बातों को हमेशा कुरान की रोशनी में देखना चाहिए। जहाँ तक इस तरह की रवायतों का ताल्लुक है, इन सब के बारे में मुहद्दिसीन का नुक्ता नज़र यही है कि ये आम तौर पर बिल्कुल गलत है, इनकी रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत से इज्तनाब करना चाहिए।
जावेद साहब, आपने फरमाया कि इस तरह की रिवायात को कुरान मजीद की रोशनी में समझना चाहिए, लेकिन जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो मिसाल के तौर पर कुरान मजीद जो है वो एक जगह कहता है कि तुम अल्लाह को कर्ज दो, अल्लाह ताला उसको 700 गुना, मैं मफहूम बयान कर रहा हूं कि 700 गुना कर देगा। और एक जगह जैसे सूरह कदर में अल्लाह ताला कहता है कि ये जो शबे कदर है तुम क्या जानो कि ये क्या है, ये हजार महीनों से अफजल है। तो कुरान मजीद भी कमोबेश इस तरह की रिवायात बयान तो कर रहा है, जो रिवायात में जो अल्फाज हैं उस तरह के कुरान मजीद के अंदर भी अल्फाज हैं।
ये बात तो मैंने इसीलिए अर्ज किया कि कुरान के फ्रेम के अंदर रख के देखिए तो जितनी बात उसके मुताबिक हो उसको ज़रूर कबूल कीजिए। कुरान मजीद ने बताया है कि अल्लाह ताला नेकी को बढ़ाते हैं, उसका अजर भी देते हैं, नेकी में नशो नवा भी होती है। एक नेकी हालात के लिहाज से, नीयत के लिहाज से, मुहर्रिकात के लिहाज से बहुत समरबार हो जाती है, नेकी एक दरख्त की तरह फलती फूलती है। ये सारी बातें कुरान मजीद ने बयान की हैं, लेकिन इसमें उस नौइयत का मुबालगा नहीं होना चाहिए जिस तरह की आपने मिसाल दी है। तो इसीलिए तो मैंने ये तवज्जो दिलाई कि जो फ्रेम कुरान ने मुहैया कर दिया है उसमें बता दिया है कि नेकी की नशो नमा के, नेकी को बढ़ाने के, उसके अजर को बढ़ाने के क्या कायदे हैं, तो वो बता दिया है। इसके ऊपर ये बात कहना कि ये कोई खरीदो फरोख्त हो रही है, तो बहरहाल इस दुनिया की ज़िंदगी में हम इम्तहान में हैं और उसके नतायज बताए गए हैं, तो ये एक नौइयत की खरीदो फरोख्त तो है। चुनाचे कुरान मजीद ने इसको खुद बयान कर दिया कि इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना, अल्लाह ताला ने जन्नत के इवज में तुम्हारे जानो माल को खरीद लिया है। देखिए वहाँ खरीदने ही का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो ये बड़ी दिलनवाज ताबीरें हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जान, हमारा माल सब हमारे परवरदिगार की नज़र है। अगर वो किसी वक्त इनका मुतालबा करे और हम अपनी जान और अपना माल कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं, तो इसके सिले में अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत की बशारत दी गई है। तो यही सारी इस ज़िंदगी की हकीकत है। हम बंदे हैं, आजिज बंदे हैं, तो आजिज बंदों को तो बहरहाल अल्लाह से नेमतों की तवक्को करनी है। चुनाचे इसी वजह से एक दूसरी जगह कहा है कि यदऊन रब्बहुम खौफम व तमा, वो अपने परवरदिगार को अंदेशे से पुकारते हैं कि कहीं गिरफ्त में ना आ जाए, और वो तमा से यानी अल्लाह ताला से ये ख्वाहिश रखते हैं कि उनको अजर मिले, उनकी आजजी के बावजूद उनके आमाल कबूल किए जाएं, उनके तजर्रो और उनकी जारी को कबूल किया जाए, अल्लाह ताला उनके आमाल में बरकत और अफजूनी दे और क़यामत में वो बख्श लिए जाएं, उनकी ख़ताओं से दरगुजर किया जाए। तो इसको ख़ुद अल्लाह ताला ने बै व शरा से ताबीर किया है, और ये ताबीर बड़ी खूबसूरत ताबीर है। एक दूसरी जगह देखिए कहा है कि हल अदुल्लुकुम अला तिजारतुन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, कि मैं तुम्हें वो तिजारत ना बताऊं जो तुम्हें आखिरत में अल्लाह के अजाब से बचा ले। तो تو تجارت کا لفظ، اشترا کا لفظ یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ ایک تجارت ہے جو ہم اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس میں در حقیقت ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارا ہمارے پروردگار کے ساتھ معاملہ خوف و طمع کا معاملہ ہے، بیم و رجا کا معاملہ ہے، اور ہم عاجز بندوں کو اسی طرح سے اور اسی جگہ کھڑے ہو کر اپنے پروردگار سے معاملہ کرنا چاہیے۔